ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बहिर्जातवीराग्या बहिर्जातवीराग्या शांतचित्ताय धीयताम्। शांतचित्ताय धीयताम्। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता है और कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। एक बार श्लोक संख्या 42। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की बही बाहरी जात विरागाया, विरागी को, अनासक्त को, शांत चित्ताया, शांत मन वाले को, दीयताम उपदेश दिया जाए, निर्मत्सराया मत्सर शून्य द्वेष ना रखने वाले को, शुचये पूर्णता शुद्ध, यस्यः जिसका अहम् मैं प्रेयसाम् प्रियो में, प्रियः अत्यंत प्रिय। अनुवाद कृपया सुनिए। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण शुद्ध चित्त हैं और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है। अनुवाद कृपया दोहराइए। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण शुद्ध चित्त हैं और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है। तात्पर्य, प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्त की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यहां भक्त का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भक्त बनने के लिए सुधारवादी विधियों को स्वीकार करने में हिचकता नहीं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को गुरु बनना पड़ता है। माफ कीजिएगा, एक शब्द गलत बोलने से पूरा मतलब उल्टा हो जाता है, माफ कीजिएगा। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को गुरु बनाना पड़ता है और उससे भक्ति विषयक प्रगति के विषय में जिज्ञासा करनी होती है। भक्ति में प्रगति करने के 64 भक्ति कार्य हैं, जिनमें से कुछ हैं भक्त की सेवा, जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप, विग्रह पूजन, श्रीमद् भागवत या भगवत गीता को सिद्ध पुरुष से सुनना, और ऐसे पवित्र स्थान में रहना जहां भक्ति में विघ्न ना पड़े। जो इन 5 प्रमुख कार्यों को करता है वह भक्त है। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का यथेष्ट सम्मान करे, उसे अपने गुरु भाइयों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपितु यदि वह अधिक प्रबुद्ध है और कृष्ण भक्ति में बड़ा चढ़ा है तो उसे गुरु तुल्य मानना चाहिए, और ऐसे गुरु भाइयों को कृष्ण भावना मृत में उन्नति करते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सामान्य जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने, क्योंकि माया के पाश से निकलने का एकमात्र समाधान यही है, यही वास्तविक लोक कल्याण है, क्योंकि उन लोगों के प्रति दया दिखाने की यही विधि है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। शुश्रूषा भीरताया शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो गुरु की सेवा में श्रद्धा पूर्वक निरत रहता है, गुरु की समस्त प्रकार से सेवा की जानी चाहिए और सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है वह भी इन उपदेशों को ग्रहण करने के लिए पात्र है। बहिर्जात विरागाय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने आंतरिक तथा बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग्य प्राप्त कर लिया है। वह कृष्ण भक्ति से संबंध ना रखने वाले कार्यकलापों से विरत तो है ही, साथ ही उसने आंतरिक रूप से भौतिक जीवन से साथ ही उसे आंतरिक रूप से भौतिक जीवन से विमुख होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए और सभी जीवों को, ना केवल मनुष्य को अपितु उनके अतिरिक्त सारे जीवों की कल्याण की कामना करनी चाहिए। शुचाय का अर्थ है भीतर और बाहर से शुद्ध व्यक्ति। अंदर और बाहर से शुद्ध बनने के लिए मनुष्य को भगवान कृष्ण या विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। दीयताम शब्द बताता है कि कृष्ण भक्ति का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए। गुरु को चाहिए कि अयोग्य शिष्य को स्वीकार ना करे, स्वयं व्यवसायिक ना बने और अर्थ लाभ के लिए शिष्य ना बनाए। प्रमाणिक गुरु को चाहिए कि वह उस व्यक्ति के प्रमाणिक गुणों को देखे जिससे वह दीक्षित करने जा रहा है, अयोग्य व्यक्ति दीक्षित ना हो। गुरु अपने शिष्य को इस तरह प्रशिक्षित करे कि भविष्य में उसके जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान कृष्ण रहें। इन 2 श्लोकों में भक्त के गुणों की पूरी व्याख्या है। जिसने इन श्लोकों में वर्णित समस्त गुणों का विकास कर लिया है वह पहले से भक्त पद को प्राप्त है। यदि उसने इन सारे गुणों को विकसित नहीं किया तो उसे अब भी इन प्रतिबंधों को पूरा करना होगा जिससे वह कुशल भक्त बन सके। कर्म बंधन। भगवान कपिल देव माता देवहूति को कर्म बंधन से कैसे छुटकारा मिले, इस पूरे अध्याय में समझाते हुए आ रहे हैं और इस अध्याय का अंत होने वाला है। मतलब इन शिक्षाओं पे जो भगवान कपिल ने समझाया, भगवान कपिल ने समझाया कि जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता है तथा कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है एक बार। कौन? ये जो पिछले दो श्लोकों में भगवान कपिल देव ने बताया या पिछले काफी श्लोकों से बताते हुए आ रहे हैं, इन दो श्लोकों को शुरू करने से पहले अगर अब हम पिछले दो श्लोकों को देखेंगे तो इस पिछले दो श्लोकों में समझाया है कि कौन सा व्यक्ति, इस जो भगवान कपिल देव ने पूरा भक्ति का ज्ञान दिया, जो कर्म बंधन से कैसे छूटा जाए, कौन से ऐसे लोग हैं जो, या कैसा, कौन सा ऐसा जीव है जो इनको नहीं समझ सकता। और आज के श्लोक, जो आज के दो श्लोक हैं 41-43 में, तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को या इस भक्ति के ज्ञान को सुनता है, एक बार भी श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक एक बार भी ध्यान करता है, वह मेरे विषय में सुनता है तथा कीर्तन करता है, निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। तो कौन से व्यक्ति या कौन सा जीव या कौन सा भक्त, ये इन दो श्लोकों में भगवान कपिल देव जी ने बताया है। और श्रील प्रभुपाद जी इसकी पुष्टि अपने तात्पर्य में पूरी तरह से समझा के कर रहे हैं। तो श्लोक में अगर हम ध्यान से देखें तो प्रभुपाद जी ने श्लोक संख्या 41 और श्लोक संख्या 42 दोनों का तात्पर्य इसी श्लोक में दिया है। केवल 42वें श्लोक का नहीं, उन्होंने 41 के भी वीत जो श्रद्धा आया है, शब्द है, उसके बारे में बताया। शुश्रूषा वीरता आया, उसके बारे में बताया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा एक कंक्लूजन या एक उसका सार दे दिया। अगर हम केवल श्लोक पढ़ें, कई बार मैं ये बात बोलता हूं कि केवल श्लोक पढ़ें, तो जैसे पहला श्लोक पढ़ा फिर दूसरा श्लोक पढ़ा, तो दूसरे श्लोक में एक जो भक्ति में आगे बढ़ा चढ़ा भक्त है उसके बारे में बताया गया है कि जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, जो पूर्ण सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, और जिन्होंने कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है, तो गुरु द्वारा उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। तो फिर तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा, वो कहेगा जो नया नया भक्ति में आया है, वो कहेगा ये गुण तो है ही नहीं मेरे, मतलब मेरे में कोई अधिकार नहीं है गुरु से सुनने का। लेकिन प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं अच्छे से पिछले श्लोक का उदाहरण देते हुए। ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण, द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो और श्रद्धा और निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं शुरू में, प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्त की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं होता, जो कि दूसरे श्लोक में बताया है भगवान कपिल ने, क्योंकि कृष्ण के अलावा किसी को, मतलब कृष्ण से अधिक उसे कोई प्रिय नहीं है। जो बिल्कुल द्वेष रहित हो गया है, पूर्ण शुद्ध चित्त है, कृष्ण भावना के अलावा कोई कार्य में उसका मन नहीं लगता, विराग है उस, मतलब उसे बिल्कुल वैराग्य हो गया उस और कार्यों से। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं नहीं, प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यहां भक्त का अर्थ है उस व्यक्ति से है जो भक्त बनने के लिए सुधारवादी विधियों को स्वीकार करने में हिचकता नहीं। तो ऐसे भक्त को जो भक्ति करना चाहता है, प्रभुपाद जी भी इस श्लोक के पहले जो तात्पर्य के पहले भाग में समझाते हैं उसे क्या करना चाहिए। भक्ति के जो मुख्य 5 अंग हैं, जो हम भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं? गुरुपाद आश्रय, साधु सेवा, हरिनाम संकीर्तन, अर्चा विग्रह और भागवत श्रवणम भागवत श्रवणम या भागवत सुनना। इस बात की चर्चा श्रील प्रभुपाद जी करते हैं, जिसमें से एक मुख्य बात और भी है जिसमें प्रभुपाद समझाते हैं कि उसको ऐसी जगह पर रहना चाहिए जिसे हम धामवास भी कहते हैं। धामवास की बात भी है इसमें, माफ कीजिएगा मैं ठीक से नहीं बता पाया, कि धामवास के बारे में बता रहे कि ऐसे स्थानों में रहना चाहिए। सबसे पहले क्या, गुरुपाद आश्रय लेना चाहिए कि गुरु के चरणों में जाके उनसे विनती करनी चाहिए या उससे सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में श्रील प्रभुपाद जी ने सारे जो मुख्य भक्ति के अंग हैं ये स्थापित किए हैं। अगर हम सुबह के इस हमारे, जैसे हम इंग्लिश में मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, ये सुबह के जो हम कार्यक्रम होता है हमारा, इसमें सारे ये कार्य हैं। व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है, सुबह सुबह मंगल आरती उठ के करता है, सब जल्दी उठ के अर्चा विग्रहों की उपासना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति आरती में खड़ा होता है वो उसे भगवान ये मान लेते हैं कि ये मेरी पूजा कर रहा है। इसीलिए भारत में आप देखेंगे कि लोग मंदिरों में ज्यादा आरती के समय जाते हैं, जब आरती हो रही होती है, मान लीजिए शयन आरती हो रही है, संध्या आरती हो रही है या दर्शन आरती होती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं। अब जयपुर जाएंगे अगर, तो वहां पर मंगल आरती में कम से कम आपको 1000-2000 भक्त मिलेंगे, पूरा भरा होता है मंदिर का प्रांगण। क्यों? क्योंकि ये संस्कार उन्हें मिले हुए हैं पहले से, क्योंकि भक्ति का मुख्य अंग है। श्रील प्रभुपाद जी ने तो इतने अच्छे से स्थापित करा कि मंगल आरती में आना है, आरती का नाम ही मंगल आरती है। मंगल आरती में आता है व्यक्ति, अर्चा विग्रह की पूजा भी करता है, उसके बाद श्रवण करता है जैसे हम कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन करता है, उसके बाद साधु सेवा शुरू होगी। अभी कोई प्रसाद सर्विस कर रहा है, कोई डीटीएस की सेवा कर रहा है, ये सारे कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने अपने इस जो भक्ति की साधना में दिया उसमें दिया है। कई बार भक्त लोग कहते हैं हमें तो धामवास नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में इन सुबह के कार्यों को कर रहे हैं, अगर मंदिर में भी ना जाते हुए अपने घर में ये कार्य कर रहे हैं, तो वो जो घर या मंदिर तो है ही, प्रभुपाद जी ने कहा जितने भी हमारे द्वारा इस्कॉन के द्वारा ये जितने भी सेंटर्स खोले गए हैं, जितने भी मंदिर खोले हैं, ये वैकुंठ है, वैकुंठ के समान है ये। क्यों? क्योंकि यहां भगवत चर्चा हो रही है, भगवान के बारे में समझाया जा रहा है, कैसे भक्ति करनी है समझाया जा रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए वृंदावन या मायापुर या जगन्नाथपुरी में रहने में असमर्थ है किसी कारणवश, तो उसे उदास नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की ये दया है और उनके शिष्यों की ये मर्सी है कि वो सेंटर्स को खोल रहे हैं हर एक जगह, क्योंकि वे अच्छी तरह से समझते हैं कि ये, या उन्हें अच्छी तरह से रियलाइजेशन है, इस बात का अनुभव है कि वे ये जो मंदिर खोल रहे हैं ये उस बद्ध जीव के लिए एक भक्ति में आगे बढ़ने के लिए साधन है। तो जब इन मंदिरों में रहते हुए या इन मंदिरों से जुड़ते हुए हम ये इस साधना से जुड़ते हैं, तो हमको इस बात का अनुभव होना चाहिए कि जो भक्ति के मुख्य पांच अंग हैं हम इनका संग कर रहे हैं या हम उनको कर रहे हैं अपने जीवन में। तो उदास नहीं होना चाहिए कि मैं वृंदावन में नहीं हूं या मैं मायापुर में नहीं हूं। और जो वृंदावन आदि जगहों पर, वृंदावन धाम जैसे और मायापुर धाम ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, उनके लिए उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या। कृष्ण बलराम मंदिर में रह के माया मंगल आरती करना, फिर जप करना, उसके बाद श्रवणम करना, उसके बाद साधु सेवा करना, उनके भाग्य का तो कहना ही क्या। तो जो भक्त इस वृंदावन धाम में रहे हैं उनको तो अपने सौभाग्य का बहुत अच्छे से लाभ उठाना चाहिए, बहुत अच्छे से, खूब मेहनत करनी चाहिए भक्ति करने के लिए, जो कि ये पहले तात्पर्य के पहले भाग में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी जो तात्पर्य का दूसरा भाग है, अब व्यक्ति मंदिर में भी है, ये सब कर रहा है, लेकिन इसमें जो बाधाएं आती हैं भक्ति में बढ़ने में, वो कैसे दूर करनी है, उसको प्रभुपाद जी दूसरे तात्पर्य के दूसरे भाग में समझाते हैं। प्रभुपाद जी दूसरे तात्पर्य की शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का यथेष्ट सम्मान करे, उसे अपने गुरु भाइयों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा है जो प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं, जो भगवान कपिल देव जी ने भी अपने मुख कमलों से बोला, निर्मत्सराय आशुष रहे। प्रभुपाद जी उसी को समझा रहे हैं कि निर्मत्सर होना चाहिए व्यक्ति को। जब हम सेवा करते हैं, खासकर मंदिर में रहते हुए या किसी भी सेंटर से जुड़ते हुए, तो अक्सर जो हम देखते हैं कि हमसे जो दूसरा भक्त है वो काफी भक्ति में आगे बढ़ गया है, या और भी भक्त जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, द्वेष आ जाता है, और कई बार तो बिना कारण भी द्वेष आ जाता है। वो ऐसी धोती क्यों पहन रहा है, उसने ऐसे क्यों चादर ओढ़ी हुई है, छोटी छोटी बातों का द्वेष आ जाता है, और द्वेष के कारण व्यक्ति वैष्णव अपराध या जीव वैष्णव अपराध करने लगता है। जब तक भक्ति से बाहर था तब तक तो वैष्णव अपराध का इतना उसे खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने भक्ति के बारे में सुना, अब उसने सोचा कि मैं कुछ करूं, मंदिर में आऊं, समझूं कैसे मुझे आगे बढ़ना है, क्या साधना करनी है, जब मंदिर में आता है तब वो वैष्णवों के बीच में रह रहा है, तब उसे वैष्णव अपराध का जो संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्रभुपाद जी उसी बात को समझा रहे हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा। द्वेष हो रहा है तो सोचना चाहिए मुझे क्यों द्वेष हो रहा है, मैं कौन हूं, बार बार फिर इसे कहते हैं साधना का एक चिंतन करना, मैं क्यों द्वेष कर रहा हूं, वो मेरे से आगे बढ़ गया तो अच्छा है, वो मेरे से अच्छी साधना कर रहा है, उसका देखना चाहिए। फिर जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो रहा है उसके गुणों को देखना चाहिए, अरे वाह, फिर भगवान दिखाएंगे, देखो वो कितने अच्छे से जप करता है, कितने ध्यानपूर्वक को सुनता है, कितने अच्छे से सेवा कर रहा है वो। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा बार बार, और प्रभुपाद जी उसको और अच्छे से समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को गुरु तुल्य मानना चाहिए। गुरु तुल्य मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए। बृहद भागवत महाराज बहुत अच्छा एक सेमिनार लेते हैं ये वैष्णव अपराध पर और वैष्णव सदाचार पर। उसमें वो समझाते हैं, उन्होंने समझाया कि जैसे किसी वैष्णव के प्रति अगर मान लीजिए अपराध हो गया, तो उन्होंने कितने 22 तरीके संजय प्रभु 22 तरीके बताए थे वैष्णव उसमें सजाता उसमें कि 22 तरीके बताए थे कि वैष्णव से अगर हमारा अपराध हो गया तो कैसे क्षमा मांगी जाए। अगर हमारे में इतना निर्भयता नहीं है, हम इतने पवित्र नहीं है, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसके सामने जाके उसके पैरों में गिर के क्षमा मांग सकते हैं, तो उन्होंने और तरीके बताए कि आप लेटर लिखिए, अगर आप एक पत्र नहीं लिख सकते तो उसके मित्र के पास जाके उससे अपने हृदय के बारे में बताइए कि मैंने वैष्णव अपराध कर दिया। ऐसे भी नहीं कर सकते, आजकल तो इंटरनेट है, कम से कम ईमेल लिखिए। बहुत तरीके, किसी तरह से उसको कोई गिफ्ट कोई उपहार प्रदान कीजिए। ये तरीके हैं कि ईर्ष्या से कैसे निकला जाए बाहर, या ईर्ष्या कम की कैसे की जाए, ईर्ष्या रहित। क्योंकि जब तक ईर्ष्या रहेगी भक्त के प्रति तो भगवान से प्रेम कैसे होगा। भगवान तो कहते हैं स्वयं भगवद गीता में कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं आपका भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है, जो व्यक्ति कहता है मैं आपके भक्तों का भक्त हूं वो मेरा भक्त है। उसी बात को प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं, उसी बात को आगे समझाते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो साधना में लगे हुए हैं, ईर्ष्या भी है, कोई क्या करे, ईर्ष्या भी है, माया जगत में है तो ईर्ष्या भी है, लेकिन क्या करना चाहिए, उसको प्रचार में लगना चाहिए। भक्त को चाहिए कि देखिए, गुरु भाइयों को कृष्ण भावना में उन्नति करते हुए देखकर प्रसन्न होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सामान्य जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने, प्रचार करना चाहिए, प्रचार की भावना रहनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में करके दिखाया सब कुछ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया, उन्हीं शिक्षाओं को भगवान कपिलदेव समझा रहे हैं कि प्रचार में लगना चाहिए। क्योंकि जब जीव प्रचार करता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। ये इस बात की पुष्टि भगवान कपिल देव ने, जब माता देवती ने प्रश्न पूछा था कि मैं अपने ही कल्याण के लिए नहीं, मैं इन सब जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रही हूं, तो भगवान बहुत खुश हुए थे। कहता हां, बहुत आनंद आया। मान लीजिए बद्ध भी है व्यक्ति, कभी कभी ये गलतफहमी होती है कि मैं पहले बहुत अच्छा पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से समझूंगा, उसके बाद प्रचार करूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसे तो उसी नए भक्त की बात कर रहे हैं ना प्रभुपाद जी। एक प्रचार होता है करुणावश, जो शुद्ध भक्त करते हैं प्रभुपाद जी जैसे, और एक प्रचार होता है अपनी पवित्रता के लिए। सामान्य जनता को कृष्ण भक्ति देने का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने, जाना चाहिए प्रचार में। मंदिर में तो मंदिर में रहकर प्रचार करने चाहिए, कोई अगर अर्चय विग्रह की सेवा में लगा तो उसे सोचना चाहिए कि ये मैं अर्चय विग्रह को एक तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं कि भगवान को अच्छे से ड्रेस करूंगा, अच्छे से उनको, और दूसरा जब जीव आएंगे या जीव भक्त लोग आएंगे, जब भगवान के दर्शन देखेंगे, उन्हें बहुत आनंद मिलेगा, उनका आकर्षण बढ़ेगा। जब माताएं माला बना रही हो तो उन्हें ये ध्यान बार बार सोचना चाहिए, माला क्यों बना रही हूं। डेफिनेटली मुख्यतः तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन जब ये अच्छे से माला भगवान पहनेंगे और जीव देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। यह कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में डीटी वर्शिप या अर्चय विग्रह की सेवा बहुत ध्यानपूर्वक की जाती है। जीबीसी ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि इस तरह से अर्चय विग्रह की सेवा होनी चाहिए, ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के शिष्यों को अच्छी तरह से पता है कि ये जो भक्ति का बहुत मुख्य अंग है, अपनी पवित्रता के लिए और प्रचार। उसके बाद प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये सब कार्य करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बार बार समझा रहे हैं इस तात्पर्य में, कि गुरु के आश्रम में रह के, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं, गुरु के आश्रम में रहकर यह सेवा करनी चाहिए। गुरु के, देखिए पहले तात्पर्य के पहले भाग में भी और दूसरे भाग में भी ये बात प्रभुपाद जी लिखते हैं। गुरु मनुष्य को चाहिए कि वे गुरु का यथेष्ट सम्मान करें। उसके बाद लिखते हैं, गुरु की समस्त प्रकार से सेवा की जानी चाहिए और सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है वह इन उपदेशों को ग्रहण करने के लिए पात्र है। मान लीजिए ईर्ष्या भी है और साधना भी नहीं हो रही और काम क्रोध मोह मत्सर्य सब कुछ है, फिर क्या करें, ये करें। गुरु पाद आश्रय लेना चाहिए, गुरु के पास जाके उनकी सेवा करनी चाहिए और गुरु जो कहे उसको करना चाहिए, तो अपने आप पात्र बन जाता है व्यक्ति। तब ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति का ज्ञान है, जो भक्ति है, वो हृदय प्रकाशित होती है। हम रोज सुबह ये गुरु पूजा में गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तो इसका प्रैक्टिकल, इसका व्यवहार कैसे होना चाहिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। श्री गुरु चरण रति ऐ से उत्तम गति, आर ना करी हो मने आशा, और कोई मेरी आशा नहीं होनी चाहिए। चक्षुदान दिल देई, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। इस तरह से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। जब हम सेवा करते हैं, गुरु को समस्त प्रकार से सेवा करनी पड़ेगी, सारी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने दिखाया, अपने शिष्यों को समझाया, अपनी गुरु पूजा खुद करवाई। आचार्य ये होते हैं। तो इस तरह से गुरु की सेवा करनी चाहिए, तब भक्ति में व्यक्ति या जीव आगे बढ़ता है। प्रभुपाद जी इसलिए इसने लिखा कि गुरु भाइयों के प्रति द्वेष ना हो। यहां पर हिंदी में गुरु भाई लिखते हैं, एक बार राधा गोविंद महाराज कहते थे कि इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखते हैं, गॉड ब्रदर्स। गॉड ब्रदर्स मतलब भगवान कृष्ण के द्वारा हमें आपस में जोड़ा गया है, तो भगवान कृष्ण के द्वारा हमें भाई बनाया गया है। बहने मतलब बनी है आपस में, माताएं बहने। तो एक दूसरे को जब हम उन भक्ति में उन्नति करता देखें तो द्वेष नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुख्य जो या बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रभुपाद जी ने एक और बताई है कि ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए और सभी जीवों की, ना केवल मनुष्यों की अपितु उनके अतिरिक्त सारे जीवों की कल्याण की कामना करनी चाहिए। कैसे सारे जीवों की कल्याण की कामना होगी? इसलिए हरिनाम कीर्तन। प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू कर दी थी शुरू से ही। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आज्ञा है कि सर्वत्र हो प्रचार मोरो नाम, और ये जो उनकी करुणा है कि केवल मनुष्य को ही नहीं सारे जीवों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका प्रचार करना चाहिए। आप देखिए विश्व के लगभग हर एक मुख्य शहरों में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। भारत में तो ऐसे लाइन लगा के रथ यात्रा हो रही है आजकल। आज रथ यात्रा यहां है, फिर एक हफ्ते बाद दूसरी वहां पर है, तीसरे हफ्ते में वहां पर है, क्योंकि इसमें एक ये भाव रहता है। एक भाव यह है कि प्रचार है, हमें लोगों को बताना है कृष्ण भावना। दूसरा भाव यह है कि सारे जीवों को इसका लाभ मिले। जो कीर्तन होगा माइक पर और जोर जोर से मृदंग बजेंगे या करताल, बहुत जोर शोर से कीर्तन होगा तो सारे जीवों को, चर अचर सारे जीवों को उसका लाभ मिलता है। इसलिए हरिनाम संकीर्तन इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने इन दो श्लोकों की जो व्याख्या इस एक श्लोक के तात्पर्य में करी है। उसके बाद जब व्यक्ति इन सारे क्रियाओं को करता है, तो प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं फिर कि जब हम इन सारी क्रियाओं को करते हैं तो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसे गुरु की तरह सम्मान मिलने लग जाता है। जैसे पिछले उसमें बताया कि एक भक्त को जो भक्ति में आगे बढ़ा चढ़ा भक्त है उसको गुरु की तरह सम्मान देना चाहिए। तो जब व्यक्ति को गुरु की तरह सम्मान मिल जाता है तो प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं, गुरु को चाहिए कि अयोग्य शिष्य को स्वीकार ना करे, स्वयं व्यवसायी ना बने। बहुत महत्वपूर्ण, मतलब प्रभुपाद जी देख सकते थे आगे कि क्या होगा, तो इसीलिए पहले से सावधान कर रहे हैं, व्यवसायी ना बने। अर्थ लाभ के लिए शिष्य ना बनाए। बड़े ध्यान पूर्वक प्रचार करना चाहिए, भक्तों के बीच में प्रचार करना चाहिए। प्रचार केवल कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए करना चाहिए, उसके पीछे अर्थ लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और शिष्य बनाए तो ये ना हो कि ये बहुत धनी परिवार से या धनी व्यक्ति है तो इसको शिष्य बनाओ और उसको ना बनाओ। बड़ा सावधान कर रहे हैं कि अब गुरु बनने के सब हमको गुरु कहने लग गए, गुरु कहने लग गए, सावधान हो जाइए, सावधानी से प्रचार कीजिए। प्रचार करना है केवल प्रचार के लिए, गुरु की आज्ञा पूरा करने के लिए, अपनी पवित्रता के लिए, जीवों की पवित्रता के लिए, बस। तो ये सारे गुण अगर विकास किसी व्यक्ति में है तो प्रभुपाद जी कहते हैं वह भक्त पद को, मतलब वो भक्ति के पद में चल पड़ा है या भक्ति पद को प्राप्त कर चुका, भक्त कहलाने लायक है। और अगर ये सारे गुण हमारे में नहीं है, हम ईर्ष्यारहित नहीं है, गुरु का सम्मान कर रहे हैं, मतलब गुरु की बहुत अच्छे से तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, अगर ये सारी जो भक्ति की विधियां हैं जो प्रभुपाद जी ने समझाई हैं ये सब कर रहे हैं तो भक्त हैं, और अगर नहीं है तो इसका मतलब हमें ये सारे गुण प्राप्त करने के लिए या ऐसे गुणों को अपने अंदर कैसे कहेंगे इसको कि डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये दोनों कार्य एक साथ चलते हैं, भक्ति की साधना और ये गुणों को प्राप्त करना। तो जो कोई श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक एक बार ध्यान करता था, इस तरह के कार्यों में लगता है, मेरे विषय में सुनता है, श्रवणम करता है और कीर्तन करता है अर्थात प्रचार करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाएगा। भगवान कपिलदेव यहां पर ये इसका निर्णय दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसमें समझाया कि किस तरह हमें भक्ति में लगना है, फिर भक्ति में लगने के बाद जो उसमें बाधाएं आती है उसको किस तरह से पार करना है गुरु की सेवा करते हुए, और किस तरह से अगर जब भक्ति में आगे बढ़े आए तो सावधान रहना चाहिए। तो एक तरह से पूरा कृष्ण भावनामृत का पूरा एक सार प्रभुपाद जी ने प्रकट करा, जिससे हमें प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हम उतारे इसको, और ऐसी स्थिति में आ जाए कि जो कि इसमें बताते हैं कि इसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि गुरु अपने शिष्य को इस तरह प्रशिक्षित करे कि भविष्य में उसके जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान कृष्ण हो। ऐसी स्थिति में आने के लिए ये सारे गुण और जो प्रभुपाद जी ने जो साधना दी है, हमें साधना भक्ति दी है, उसको करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी या कॉमेंट प्लीज। माता है प्रभु जी, आप सब तो बहुत भाग्यशाली हैं, श्रीधाम वृंदावन में इन भक्ति के पांचों अंगों में लगे हैं। तो एक बार वही प्रार्थना कि इस सौभाग्य को हमें पूरी तरह से इसका लाभ उठाना चाहिए, सौभाग्य का। श्रीमद् भागवत महापुराण की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।